अरुणिमा उस ठंडे फर्श पर सुकून से सो रही थी। भले ही वो फर्श पत्थर का था, लेकिन उसके लिए ये उसका मुलायम बिस्तर था। उसे बस सुकून की नींद चाहिए थी। जब उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई थी, तो वो और किसी से क्या ही शिकायत करती। अरुणिमा अपने दुपट्टे को कंबल समझकर उसे ओढ़े हुए सो रही थी और अपने सपनों में खोई हुई थी। उसे दुनिया जहाँ की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसे कोई परवाह थी। तभी अरुणिमा को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई चमड़े की चीज़ उसके आसपास है, क्योंकि उसे चमड़े की बदबू आ रही थी। जब अरुणिमा से वो बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो हड़बड़ा के उठ गई और फर्श पर ही बैठ गई। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सामने आस्तीक की भयंकर छवि नजर आई। आस्तीक उस समय अरुणिमा के बहुत करीब खड़ा हुआ था, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने, और उसका जूता अरुणिमा के चेहरे के बहुत पास था, जिससे आस्तीक के चमड़े के जूते की स्मेल अरुणिमा को नींद से जगा देती। पिछली रात आस्तीक का व्यवहार जैसा था, अरुणिमा आस्तीक को देखकर डर से कांप गई और फर्श पर ही बैठे बैठे पीछे खिसकने लगी। लेकिन आस्तीक अपने पंजों के बल अरुणिमा के सामने बैठा और मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। अरुणिमा हैरानी से आस्तीक को देखती रह गई। ये आदमी क्या चीज है? कल रात तो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था और अभी मुस्कुराते हुए फूल बरसा रहा है। अरुणिमा हैरानी से आस्तीक को देख ही रही थी कि आस्तीक ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा के गालों पर अपने हाथ रख दिए। अरुणिमा अचानक से कांप गई, लेकिन आस्तीक उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, देखिए रानी साहिबा, मैं जानता हूँ ये जगह आपके लिए नहीं है और यहाँ के नियमों का पालन करने में आपको समय लगेगा, लेकिन इस महल के कुछ नियम हैं और एक रानी होने के नाते आपको उन्हें मानना ही होगा। वैसे तो मुझे आपके ज्यादा देर तक सोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रानी को ये शोभा नहीं देता है कि वो इतनी देर तक सोई रहे, क्योंकि आज इस महल में एक रानी के रूप में आपका पहला दिन है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आशा करता हूँ कि कल से आप जल्दी उठेंगी। अरुणिमा का मुंह खुला का खुला रह गया था। आस्तीक अपने शब्दों में शहद लपेटकर अरुणिमा से बात कर रहा था। अरुणिमा की लगभग जान गले को अटक गई थी। अगर आस्तीक इतना ही मीठा बनकर उससे बात करेगा तो अरुणिमा को शुगर हो जाएगी। अरुणिमा हैरानी से आस्तीक को देखती रह गई, तो आस्तीक ने कहा, जाइए जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरुणिमा हैरानी से आस्तीक को देखती हुई खड़ी हुई और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। उसके बाथरूम में जाते ही आस्तीक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपनी अलमारी के पास गया और वहां से कुछ बॉक्स निकालने लगा। थोड़ी देर बाद अरुणिमा जब फ्रेश होकर बाहर आई तो देखी आस्तीक अभी भी कमरे में था। उसे देखकर अरुणिमा एक बार फिर से डर गई, लेकिन आस्तीक मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखा। उसने देखा कि अरुणिमा ने एक हल्की सी साड़ी पहनी हुई थी, तो आस्तीक ने कहा, आप अच्छी लग रही हैं रानी साहिबा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहने। अरुणिमा हैरानी से आस्तीक के हाथों को देखी। उसके हाथों में एक हैंगर पर लाल रंग की बनारसी साड़ी थी, जिस पर सोने के तार से वर्क किया गया था। इतनी भारी साड़ी को देखकर अरुणिमा आस्तीक को देखी और हिचकिचाते हुए कहा, ये साड़ी बहुत हैवी है। आस्तीक मुस्कुराते हुए अरुणिमा के पास आया और अरुणिमा के हाथ में उस साड़ी के हैंगर को पकड़ाते हुए कहा, भारी साड़ी, भारी गहना, इन सब की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आप दुनिया के सामने एक मामूली सी लड़की बनकर नहीं आएंगी, बल्कि सिंघल की रानी बनकर आएंगी, और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी रानी को मामूली समझे। अरुणिमा हैरानी से आस्तीक को देखती रह गई, लेकिन आस्तीक के शब्दों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी। अरुणिमा ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से बाथरूम चली गई। जैसे ही वो बाथरूम से तैयार होकर बाहर आई, उसकी आभा बिल्कुल अलग सी थी। आज अरुणिमा सिंघल की रानी के रूप में बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। आस्तीक की नज़रें तो अरुणिमा के ऊपर जमी हुई थी और उसे इस तरीके से देखता पाकर अरुणिमा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आस्तीक अरुणिमा के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। अरुणिमा के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ पड़ा। आस्तीक अरुणिमा को लेकर ड्रेसिंग टेबल के पास आया और उसे ड्रेसिंग चेयर पर बैठाया। अरुणिमा के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आस्तीक का आज का रवैया कल से बिल्कुल अलग था, आज वो कुछ और ही था। आस्तीक ने सबसे पहले कंसीलर लिया और अपने हाथों में लेते हुए अरुणिमा के गर्दन पर लगाने लगा। अरुणिमा देखी, आस्तीक अपने दिए हुए घावों को छुपा रहा था। अरुणिमा की आंखें नीची हो गईं और आस्तीक अरुणिमा के सामने ड्रेसिंग टेबल पर टिक कर भागते हुए कहा, कुछ दाग दुनिया से छुपा कर रखना पड़ जाए तो इसी में सबकी भलाई है, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरुणिमा को अच्छे से पता था कि आस्तीक के शब्दों का मतलब क्या है। वो चाहता था कि उसके शरीर पर जितने भी जख्मों के दाग हों, अरुणिमा कभी भी उन्हें दुनिया वालों के सामने न दिखाए। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। आस्तीक ने खुद अपने हाथों से अरुणिमा के पूरे चेहरे पर कंसीलर लगाकर दाग छुपाया था और फिर हल्की रंग की लिपस्टिक लेकर अरुणिमा के होठों पर लगा दी। माथे पर बिंदी, आंखों में काजल और हाथों में चूड़ियां आस्तीक ने खुद अपने हाथों से पहनाई। आस्तीक जैसे जैसे अरुणिमा का श्रृंगार कर रहा था, अरुणिमा की हैरानी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कल रात उसने आस्तीक का जो रूप देखा था उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आस्तीक से कोई सवाल कर सके। अरुणिमा देख सकती थी कि उसका श्रृंगार करते हुए आस्तीक के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। आस्तीक ने अरुणिमा का पूरा श्रृंगार कर दिया और फिर सिंदूर की डिब्बी उठाकर उसमें से एक चुटकी लेकर अरुणिमा के मांग के बीच में भर दिया। अरुणिमा का श्रृंगार इस एक चुटकी सिंदूर से कितना निखर कर आया था ये तो सिर्फ आस्तीक ही जानता था। उसका पूरा श्रृंगार एक तरफ और उसके मांग में सिंदूर एक तरफ, अरुणिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आस्तीक ने हल्का सा काजल अरुणिमा की आंख के कोने से निकाला और उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत है रानी साहिबा, आपको किसी की नजर न लगे, एक काला टीका हमेशा अपने कान के पीछे लगाकर रखा कीजिए।